यार।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
गीत गा।
खूबसूरत शाम। रेडियो प्रोग्राम पैगाम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस रेडियो प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। साबित ये रेडियो प्रोग्राम पैगाम है जो हर इतवार के रोज आपकी खिदमत में पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की तरफ से पेश किया जाता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए जिंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो। हम सबको, मुझे भी और आपको भी, खुदा के प्यार की एक नई तरह से समझ आएगी। बहुत अहम टॉपिक आज का, मुझे यकीन है कि हम सबको ये टॉपिक, इस टॉपिक से बरकत मिलेगी, खुदा की मोहब्बत की एक नई तरह से समझ आएगी। प्रोग्राम के आखिर तक इस टॉपिक को सुनिए और अगर आपके जहन में कोई सवाल उठता है तो जरूर हमें कॉल कीजिए प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम के बाद में। प्रोग्राम के दौरान आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं 001-888-888-7114। इस नंबर पर अगर आप कॉल करें तो आप बराह रास्त हमसे बात कर सकते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान। अगर आप प्रोग्राम के बाद कॉल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है, व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। यूके का लोकल नंबर है 442-300-3483। ये प्रोग्राम यूके से नशर नहीं किया जाता लेकिन हम ये नंबर इसलिए दिया है कि अगर आप यूके में हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद, ये पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की पेशकश है, इस प्रोग्राम का मकसद खुदा के प्यार को आप तक पहुंचाना है जो हमारे ईमान के मुताबिक वो हम सबसे करता है, आपसे करता है, हमसे करता है। आपका कोई भी मजहब है, खुदा आपसे प्यार करता है। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप मसीही हैं, आप यहूदी हैं, गॉड लव्स यू। और आज के प्रोग्राम में हम जो कुछ भी कहें अगर आप वो सब भूल जाए तो एक बात याद रखिए कि खुदा आपसे प्यार करता है। और आज का दिन जो, या आज की शाम जो उसने आपकी जिंदगी में दी है, वो इस हकीकत का सबूत है कि वो आपसे प्यार करता है। ये आपके अमाल का नतीजा नहीं है कि आप कोई इबादतें हैं आपकी, या आपके अमाल है, या आपकी रियाजतें हैं, ये आज के दिन की वजह नहीं है। क्योंकि अगर आपकी इबादतें आज के दिन की वजह, माफ कीजिए प्रवेश साहब, भी बरसत मुझे, प्रवेश साहब आपका शुक्रिया, आप अपने वक्त का हिस्सा भी देते हैं। प्रवेश साहब आप जरा बताएंगे हमें अपने बारे में, हमारे सुनने वाले बहन भाइयों को थोड़ा सा, क्योंकि काफी देर हो गई आपसे बात हुई, बहुत से नए लिसनर्स हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं। पिछले दो हफ्ते पहले हमने प्रोग्राम किया था प्रवेश साहब, 100+ 1,20,000 व्यूज है उसके। सो आई बिलीव दैट लॉट्स ऑफ पीपल लिसन, तो बहुत से लोग, नए लोग हैं जो सुनते हैं, आप हमें बताएंगे। जरा वॉल्यूम ऊंचा कर दीजिए, आपकी आवाज थोड़ी सी कम लग रही है, या वैसे ऊंचा बोलिए आप।
जी बहरहाल सैमसन भाई, आपका शुक्रिया कि आप मुझे इस प्रोग्राम में अपने साथ मौका देते हैं। आपको और तमाम सुनने वालों को खुदावंद यीशु मसीह में बहुत बहुत सलाम। मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, खुदा का शुक्र है कि आप मुझे इस प्रोग्राम के जरिए, आप, मैं अपने लोगों तक ये नई बातें पहुंचा सकता हूँ। यू नो, मैं शुक्र करता हूँ आपका और खुदा का के आपके इस रेडियो के वसीले से मैं भी थोड़ा बहुत जो पार्टिसिपेट कर सकता हूँ इसमें। तो सैमसन भाई, अपने बारे में क्या बताएं, खुदा सब तारीफ खुदा की है। और मैं पाकिस्तान से, जैसे आप कराची से, मैं भी कराची से हूँ। हमारे वालदैन जो थे वो हरिपुर हजारा से थे और कराची में बड़ा हुआ हूँ। और खुदा की ये मर्जी थी कि आपके इस प्रोग्राम में पिछले 10 साल से खुदा इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे खुशी है कि खुदा ने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आपके साथ।
अपनी जुबान में अपने लोगों से कुछ बात करेंगे आप?
जी, तमाम सुनने वाले उदाहरण यस्सी मसीह अब हुआ और जिन कितने से जानते हो कि ये प्रोग्राम जो रास्ता है ये बाइबल दे मुताबिक असन तुसन गलन दस्ते बाइबल दे बारे में असन अस्ति तालीम जिरी बाइबल असन तालीम दें दिया उस दे बारे में असन तुसन दस्ते हैं इस प्रोग्राम के जरिए और ये जरूरी है कि असन गौर करा इन गलन दा क्योंकि गलन में जिंदगी है अल्फाजा में जिंदगी है बोलना भी जिंदगी है जब तक कोई आदमी कोई अपने मुंह बोलता नहीं तब कुछ होता नहीं इस गल को ज़हन में रखो कि किताबे मुकद्दस में खुदा असा नाल गल कर रहे असा नाल कलाम कर रहे और जब तक जब असा उस ते कलाम तक गौर कर दे तब फिर अस ते दिला दा असर होता है और खुदा दा कलाम दिलन बदली कर दे और जब इंसान दा दिल बदली होता है तो इंसान दे अंदरों अच्छी गला निकलती है अच्छे कप निकलते हैं और इंसानियत निकल दिया इस वास्ते इस जरूरी है कि असा गौर करा किताबा तो मुझ सारी लेकिन कलाम कलाम इलाही कलाम खुदा कुछ है उसको ढूंढना होता है और आदमियों को हैक मौका होता है जिंदगी के अंदर और अगर वो आदमी कोई आदमी उस मौके को जाया कर छोड़ा और खुदा दे कलाम को खुदा को ढूंढाना तो फिर वो आखिर में बहुत पछतासी क्योंकि खुदा ने अपना कलाम जमीन तक पैद छोड़े खुदा ने अपना 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 अपनी मोहब्बत अपने आप को असल तक जाहिर करके दे यीशु मसीह के जरिए और एक खुशखबरी है और एक खुशखबरी असं इस प्रोग्राम के जरिए तो सदक पहुंचाने पर इस खबरी ने खुशखबरी ने पहुंचाना भी कई लोग जिहड़े हैं वो बदनाम भी हो जुलते हैं मारे भी जुलते हैं लेकिन किसी ने कहना था कि खुशखबरी बहुत जुला ए अस्ती जीत है कि तुस्ते कहना था कि गल बहुत जुला तो बाकी खुदा एक कलाम है खुदा जुड़ा है वो बीज ना लुआ जिस तरह बीज बाया जुलता है बीज फिर पौधे को उगाना है पौधे में फिर फल लगता है एक कलाम इस तरह वर्क कर दे है दिहाड़े भी नहीं होंगे बल्कि कुछ टाइम लगता है लेकिन जब बीच सटिया जुलता है तो उस तक फिर इंतजार किया जुलता है तो मेरे प्यारे प्रवास मैं तो संग इस प्रोग्राम के जरिए तो संदी सलामती चाहना और कोशिश है कि अस तो संदार नई नई गल कहन के आवा इस प्रोग्राम के जरिए सुनते रहो इस प्रोग्राम को शेयर करो इस प्रोग्राम को और दूसरों भी दसो
एक जमाने में नवाज शरीफ ने परवेज साहब को क्या बनाया था परवेज साहब आपको
मुझे पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का स्टॉप
जी और ये नवाज शरीफ परवेज साहब मुझे यकीन है कि आपने नवाज शरीफ ने आपको किसी वजह से बनाया होगा वी नो व्हाई क्योंकि यू हैव अ हार्ट फॉर ह्यूमैनिटी इन योर इनसाइड यू दैट गॉड हैज गिवन यू हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते आज का टॉपिक अल्लाह के वास्ते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक परवेज साहब और ये एक ऐसा जुमला है अल्लाह के वास्ते जो हम में से बहुत से लोगों ने खासतौर पर पाकिस्तान में रहते हुए कभी ना कभी जरूर इसको सुना होगा अल्लाह के वास्ते बाबा अल्लाह के वास्ते ये कर दो अल्लाह के वास्ते बाबा रोटी दे खिला दे अल्लाह के वास्ते बाबा 10 रुपए दे दे आजकल तो 10 रुपए की सुना है डॉलर बहुत बढ़ गया है रुपया की कीमत कम हो गई है लेकिन चले 100 रुपए कर लीजिए 1000 रुपए कर लीजिए तो ये एक ऐसा जुमला है जो हम में से बहुत से लोगों ने बहुत बार सुना है लेकिन शायद इसके बारे में गौर नहीं किया एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर हम आज मिलकर इस जुमले के बारे में गौर करेंगे और आपको शायद पता नहीं कि इस जुमले में कायनात को की हकीकत को खोलने की ताकत मौजूद है परवेज साहब दिस सेंटेंस विल रिवील द ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स आप कहेंगे ये कैसे दैट्स व्हाई वी आर हियर दैट्स व्हाई वी डू दिस प्रोग्राम क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको किसी और जगह से नहीं पता चलेगी ओनली इन दिस प्रोग्राम वी ब्रिंग दीज टॉपिक्स टू यू तो इसलिए आप इस प्रोग्राम को सुनिए अल्लाह के वास्ते कायनात की हकीकत को खोलने वाला जुमला क्या आपने कभी ये जुमला कहा है? परवेज साहब, मैं अपने बहनों भाइयों से पूछता हूं, कभी आपने जुमला कहा है? अगर नहीं कहा तो कहिए, अगर नहीं कहा तो यू शुड से दिस, और मैं अब आपको बताएंगे क्यों, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी की हकीकत, इस कायनात की जिंदगी की हकीकत खुलेगी आपके ऊपर, और आप हैरान होंगे कि ये जुमला आपके लिए क्या क्या कर सकता है, और ये बाइबल हमें बताती है। कैन यू बिलीव दैट परवेज साहब, अल्लाह के वास्ते का बाइबल के साथ कनेक्शन है।
अच्छा,
आप कहेंगे कैसे, अब आपको बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले हम अपने बहनों भाइयों के लिए दुआ करते हैं, जैसा हमेशा करते हैं, खास तौर पर आपके बच्चों के लिए, कि खुदा आपके बच्चों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आइए दुआ करते हैं और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से बहन भाई जो मसीही मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, हम आपको बताते चले कि हम मसीह यस्सु का नाम लेकर दुआ करते हैं, और हम आपको आज के प्रोग्राम में पहले भी बताया है, फिर बताएंगे कि क्यों हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में अब वाजह हो जाएगा, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ आप ये कह सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम उनका नाम लेकर दुआ करते हैं। और हमारे बहुत से बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई खासतौर पर, वो यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा मसीह जिंदा है, ही इज अलाइव। तो जो जिंदा होता है परवेज साहब, उससे बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या ख्याल है? तो आप इसको बुरा मत मानिए, इसको गलत मत समझिए या शर्माइए नहीं इससे, मैं ये कहना चाहता हूं वो आपके भी है, तो आप भी उनका नाम लेकर दुआ कर सकते हैं, क्योंकि वो जिंदा है, राइट? तो इसलिए आप उनका नाम लेकर दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज वो यहां पर होते परवेज साहब, मैं अपने बहनों भाइयों से पूछता हूं, वो तमाम बहन भाई का मसीही हो, का यहूदी हो, का या मुसलमान हो, का कोई हिंदू कोई भी हो, अगर आप मसीह यस्सु पर यकीन रखते हैं और अगर वो जिंदा आपके सामने आज होते, मिसाल के आप घर से बाहर निकलते और आपको वो चलते हुए नजर आते, मैं जो बात बताना चाह रहा हूं सब ये कि अगर वो जा रहे होते तो क्या आप, अगर आपकी कोई जरूरत होती और आपको पता होता कि वो जरूरत को पूरा कर सकते हैं, तो क्या आप उनसे बात ना करते? मैं समय तो जरूर करता हूं, राइट? और उसमें कोई शिर्क की बात नहीं है, क्योंकि एक शख्स है वो खुदा के बंदे हैं, आज जैसे बहुत से बहन भी यकीन करते हैं और वो मौजज़े करते हैं, राइट? तो अगर आपका कोई बच्चा बीमार है, अगर आपको कोई दुख है और आपको पता है कि ये शख्स मौजज़े करता है, तो आप उसके पास ना जाते? हर? जाते, जरूर जाते, उसमें कोई शिर्क की बात नहीं है,
तो मुर्दों के पास जाते हैं,
किसी ना किसी के पास तो जाते। तो क्या मेरा मतलब है कि अगर आज वो आपके सामने नहीं है लेकिन अगर जिंदा है, तो उनसे दुआ करना वैसे ही है जैसे आपके सामने है, नजर नहीं आ रहे लेकिन दीवार की दूसरी तरफ है, लेकिन है तो सही और जिंदा है, तो इसलिए उनसे दुआ करने में कोई मजायका नहीं होना चाहिए, कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, ये मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूं। अगर जिंदा होते फिर भी, सामने होते फिर भी तो करते आप, तो ये बात आप उनका नाम लेकर खुद भी दुआ कर सकते हैं। तो हम मसीह यीशु का नाम लेकर दुआ करेंगे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, और हम यकीन रखते हैं कि खुदा दुआओं का सुनने वाला खुदा है, दुआओं को सुनता है। बाइबल हमें बताती है कि उसके कान हमेशा हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं। आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, जिसने आज का दिन मुमकिन बनाया हमारे लिए। हम इसके मुस्तहिक नहीं है प्यारे खुदा, हमारे अमाल, हमारे काम, हमारी हैसियत इस काबिल नहीं है कि तू हम पर रहम करे, लेकिन तेरा बहुत बड़ा फजल है जो हमारे इदराक से, हमारी समझ से बाहर है, जिसकी वजह से तूने आज का दिन और ये तमाम बरकतें हम सबके जिंदगी में दी, बिला इम्तियाज रंग वसम। हम उसको समझ नहीं सकते लेकिन तेरा शुक्र अदा जरूर कर सकते हैं, और उसी फजल, उसी रहम का सहारा लेकर तेरे प्यारे कदमों में आते हैं, अपने सर को तेरे कदमों में झुकाते हैं प्यारे खुदा। और इस वक्त मैं अपने तमाम बहनों भाइयों को जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन सबके दुखों, तकलीफों, परेशानियों, बीमारियों को प्यारे खुदा लेकर तेरे कदमों में डालता हूं, क्योंकि तेरे कदम वो जगह है जहां पर दुख खुशी में तब्दील होते हैं, बीमारियां शिफा में बदलती है प्यारे खुदा, जहां पर आंसू जो है वो हंसी में तब्दील होते हैं। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है प्यारे खुदा, अगर कोई और जगह होती तो हम जरूर जाते, लेकिन प्यारे खुदा तेरे कदम वाहिद जगह है जहां पर हमें तसल्ली मिलती है, परेशानियों से निजात मिलती है। अपने तमाम बहनों भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि तू उनके गमों को खुशियों में बदल दे, उनकी बीमारियों को शिफा में बदल दे, उनकी जो भी प्रॉब्लम है प्यारे खुदा उनके मसाइल को हल कर। खास तौर पर उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदा, उन पर अपने फजल के हाथ को बढ़ाए रख, جب بچے گھر سے باہر جاتے ہیں گھر کے اندر آتے ہیں, پیارے خدا ان کے ساتھ جا, اپنے فرشتوں کو ان کے ساتھ بھیج تاکہ وہ ہر دکھ, ہر حادثے, ہر بڑے پریشانی, ہر برے اثر سے, برے لوگوں سے محفوظ رہے پیارے خدا. اور اس کی وجہ سے تیری تعریف ہو, لوگ جانے کہ تو کتنا اچھا خدا ہے. کیونکہ جو کام بھی ہو پیارے خدا, اگر اس میں تیری تعریف نہیں ہوتی تو وہ بے فائدہ ہے ہر کام, کیونکہ تو کرتا ہے پیارے خدا. اس لیے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری تعریف کریں تیرے عجیب کاموں کو دیکھ کر. پیارے خدا ہمارے بہن بھائیوں کو, اپنے بچوں کی کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی جاب کی پرابلم ہے, رشتوں کی پرابلم ہے, صحت کی پرابلم ہے, پیارے خدا اپنے ہاتھ کو بڑھا, شفا بھرے, اپنے طاقتور ہاتھ کو بڑھا, ان کو چھو اور ان کی ضروریات کو پورا کر. اگر کسی بہن بھائی کے پاس جاب نہیں ہے پیارے خدا, اپنے خزانہ غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا کر. ہم سب پر رحم کر, ہم پر بھی رحم کر. آج کے پروگرام میں ہم جو کچھ کہے پیارے خدا تو ہمارے ساتھ ہو, کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے دوسرے کے لیے ہم ٹھوکر کا باعث بن سکے, جس سے تیری پیارے خدا تیرے نام پر حرف آئے. یہ دعا مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے, اس یقین کے ساتھ کہ تو نے سنی ہے اور قبول کی ہے. آمین. اور بہن بھائیوں اس کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں. ضرور سنتے رہیے پروگرام کو. اللہ کے واسطے کائنات کی حقیقت کو کھولنے والا ایک جملہ, کیا کبھی آپ نے جملہ کہا ہے؟ اگر نہیں کہا تو کہیے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. آج اس بھید پر سے ہم پردہ اٹھائیں گے. اگر پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کا نمبر ہے 001-001-888. روحامہ امین, آپ کا شکریہ. ساجد بھائی, وقار صاحب, منیر گل صاحب, امان پرویز, رفت ڈینیل, نوید احسان, شکیلہ ڈینیل, آپ کا بہت شکریہ. تمام بہن بھائی, ممتاز اگست, نام آتے جاتے ہیں, بٹ آل آف یو, جن کے نام میں نہیں پڑھ سکا, سب کا شکریہ. اللہ کے واسطے پرویز صاحب, آپ نے جملہ ضرور سنا ہوگا پاکستان میں, یہ جملہ اکثر آپ کو سڑکوں کے چوراہوں پر سننے کو ملتا ہے, بسوں کے اندر سننے کو ملتا ہے, جب آپ سبزی لینے جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, وہاں پر سائیڈ واک یا فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے غریب اور بھکاری لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتا ہے اللہ کے واسطے. لیکن اکثر جو ہے پرویز صاحب, یہ جملہ ہم سن کر, بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو اتنی کامن ہوتی ہے کہ جب ہم ان کو سنتے ہیں تو وہ ہمیں انگریزی میں کہتے ہیں ڈی سینسٹائز کر دیتی ہے. ڈی سینسٹائز کا مطلب ہے کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا اینی مور. کچھ چیزیں ہیں جب بار بار دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر فیل نہیں ہوتا, وی بیکم ڈی سینسٹائزڈ. اس کی مثال جو ہے پرویز صاحب, اگر ہم کوئی حادثہ دیکھیں, کوئی شخص گرا ہوا ہے, اس کے خون بہ رہا ہے, تو ہم لوگ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پیر کانپنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں, رائٹ. لیکن اگر آپ روز روز بار بار اسی سین کو دیکھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے, پھر آپ کو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا. ڈاکٹرز کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ڈاکٹرز جب بار بار, خاص طور پر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو ایمرجنسی روم میں ہوتے ہیں, جب ان کے پاس مریض آتے ہیں جو بڑی ایکسیڈنٹس کے مریض جو, یا دوسری طرح کے جو, جن کو بڑی پریشان, بڑی ایک عجیب و غریب ان کی حالت ہوتی ہے, تو وہ بار بار اس کو دیکھ کر دے بیکم ڈی سینسٹائزڈ, رائٹ. ایموشنلی ان کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ہم پر ہوتا ہے. تو اللہ کے واسطے ایک ایسا جملہ ہے پرویز صاحب جس کا ہم پر اتنا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اس کو روز سنتے ہیں اور اس کے جواب میں اکثر ہم اللہ کے واسطے بابا اور ہم معاف کرو کہہ کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, رائٹ. اللہ کے واسطے کا جواب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ معاف کرو, اور بات آگے بڑھ جاتی ہے. اب گھر آ جاتے ہیں, فقیر جو ہے وہ سڑک پر بیٹھا رہ جاتا ہے اور زندگی چلتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس جملے کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ کے واسطے, بہت سے ہمارے بہن بھائی پرویز صاحب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. مسیحی بہن بھائی, اس کے اوپر آپ نے بہت عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا کہ اللہ کا لفظ ہم مسیحیوں کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. پاکستان کرسچن ریڈیو کے ویوز جو ہے, ہم दोबारा करेंगे इसके ऊपर प्रोग्राम, राइट? राइट नाउ इज नॉट द टॉपिक कि हम इसको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है हम अल्लाह के वास्ते ये जो जुमला है इसको डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, इसके हिस्से करेंगे. अल्लाह फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, इस बहस पे मत जाइए क्योंकि बहुत से बहर भाई जो काम का परवेज सब जो इस वक्त जो मौजूद नहीं है उसकी तरफ चल पड़ते हैं और फिर वो बात बीच में अधूरी रह जाती है. तो फॉर आर्ग्यूमेंट से इस पर मुझे मुझसे ना हमसे आप बहस कीजिए ना इसके ऊपर आप कमेंट छोड़िए कि आप अल्लाह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज आई विल नॉट आंसर दैट एंड आई विल, आपका वक्त जाया होगा, मेरा वक्त, हमारा वक्त भी जाया होगा. तो अल्लाह जो है, अल्लाह के वास्ते जुमले में एक लफ्ज अल्लाह है, उसके बाद के है और उसके बाद वास्ते है. तो तीन, देयर थ्री वर्ड्स, इस जुमले में तीन लफ्ज है, अल्लाह के वास्ते. अल्लाह जब जब कोई शख्स अल्लाह के वास्ते कहता है, मैं समझता हूं, फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि आप कहते हैं कि जी अल्लाह नहीं कहना चाहिए, अंडरस्टैंड, और मैं भी अपने मुस्लिम बहन भाइयों से भी ये कहता हूं परवेज साहब कि 70 की दिहाई के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुदा का लफ्ज पाकिस्तान में मतरूक होता चला गया, उठा लिया गया उसको और अल्लाह का लफ्ज उसकी जगह आ गया. पहले खुदा हमारे काम आता था, राइट? मेरा, मैं कभी कभी सोचता हूं कि 70 की दिहाई से पहले हमारे काम कैसे चलते थे जब अल्लाह का नाम नहीं होता था. उस वक्त भी काम चलते थे हमारे, राइट? खुदा के वास्ते जब कोई कहता था तो मैंने जान के जब अल्लाह के वास्ते कहा है, इवन दो आई कुड हैव यूज्ड खुदा के वास्ते. तो जब आप उस वक्त खुदा के वास्ते लोग पैसा देते थे, अब अल्लाह के वास्ते देते. यू सी द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. पहले भी काम चलते थे, जिसे नहीं दे रहा होता था वो पहले भी नहीं देता था, जिसे नहीं दे रहा होता था वो अब भी नहीं देता. तो ये क्या बात है कि हम खुदा नहीं कहते अल्लाह कहते. दिस इज सम ट्रांसफॉर्मेशन किसी और, आई गेट कैरिड अवे विद दैट, अंग्रेजी में कहते. लेकिन अच्छा, ईरान में भी लोग मुसलमान है, वो खुदा कहते हैं,
वो खुदा कहते
हैं. आप ईरान में जाइए, वो खुदा कहते हैं. लेकिन एक सेपरेट टॉपिक है, मैंने थोड़ी सी तवज्जो आपकी तरफ दिलाई कि दिस इज अ ट्रस्ट. और लोग अब कहते हैं जी खुदा कहते ही नहीं, इसका मतलब आपके बाप दादा ने जो खुदा कहा था वो गलत कहा था, उनकी भी तो खुदा दुआ सुनता था, राइट? तो ये बात आप मत कहिए, राइट? थोड़ा सोचिए इसके बारे में. और एक दूसरी बात मैं भी कहूंगा, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अल्लाह और इलाह इसमें क्या फर्क है. दो लफ्ज से सिर्फ अब गिविंग यू अ थॉट, टॉपिक किसी और वक्त करेंगे. तो इस वक्त अल्लाह के वास्ते देयर थ्री वर्ड्स. अल्लाह एक ऐसी हस्ती की तरफ इशारा किया जाए, जब कोई फकीर कहता है अल्लाह के वास्ते परवेज साहब, तो अल्लाह के लफ्ज के साथ उसका जो तस्वुर आता है वो एक ऐसी हस्ती है जो बहुत बड़ी है और ऊपर रहती है कहीं, है ना? क्योंकि एक फकीर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको ये जो अल्फाज के मानी, ये लफ्ज कहां से शुरू हुआ, ये क्या जो अरब का जो खित्ता था इसमें पहले भी इस्तेमाल होता था इस्लाम से पहले या नहीं, इसके इसका मतलब क्या है, कब शुरू, उससे इसको कोई ताल्लुक नहीं है. एक फकीर बेचारा जो बैठा हुआ है उसकी नजर में जब वो अल्लाह कहता है, एक फकीर की नजर में, एक मांगने वाले की नजर में अल्लाह का लफ्ज एक जो एक हस्ती है जो बहुत बड़ी जो ऊपर रहती है जिसने सबको बनाया है, राइट? उसको सिर्फ इतना पता है, राइट? और जब वो कहता है अल्लाह के वास्ते, तो अल्लाह का लफ्ज वो इस हस्ती के लिए इस्तेमाल करता है. अब हम करेंगे कि वास्ते का क्या मतलब है ना परवेज साहब. वास्ते के ऊपर हम जो है एक अब बात करेंगे और उसके बाद अब इसको जमा करेंगे. वास्ता जो है, कहा चला गया वास्ता, ये सारा हमने बंदोबस्त किया हुआ है परवेज साहब. बाइबल हमारे पास वो है उर्दू जिसको कहते लुगत है, राइट? और उसमें वास्ते की डेफिनेशन हम फिरोजुल लुगत है हमारे पास, और उसमें वास्ते की डेफिनेशन हम आपको बताते हैं. काफी लंबी डेफिनेशन है. वास्ते का मतलब है दरमियानी चीज या शख्स, एलची, सालस, बचोलिया जो बचाने वाला होता है, कासिद, लगाव, ताल्लुक, निस्बत, काम, सरोकार, गर्ज, मतलब, सबब, बायस, वजह, वसीला, जरिया, तुफैल, सदका, दोस्ती, रिश्तेदारी, जमा, वसायत, उर्दू जमा, वास्तो, वास्ते, राइट? तो ये पढ़ लीजिए. तो ये जो है इसकी तारीफ है वास्ता की, लेकिन जो इस जुमले में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वास्ता, उसका मतलब ये होता है, गौर से मेरी बात सुनिए, जब कोई आपकी बात ना सुने परवेश साहब, जब कोई आपकी बात ना सुने और आपके बीच में एक फासला है, एक गरीब है, गौर से मेरी बात सुनिएगा, एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ जा रहा है, गरीब आदमी के फटे हुए चीथड़े हैं, अमीर आदमी के पास महंगे कपड़े हैं और महंगी गाड़ी है, आप मुझे यह बात बताइए परवेश साहब, उन दोनों के बीच में क्या चीज कॉमन है?
उनका जैसा
अंडरस्टैंड है, कोई और कोई ऐसी चीज है जिससे मुझे कहे कि ये मेरा ये लगता है? अब बाहर में सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल, ये इसमें कोई डीप नहीं है, उसमें कोई रिश्ता नहीं है उनका आपस में, राइट? नहीं है ना रिश्ता उनका आपस में? अच्छा
नहीं,
तो अब उन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, ना उस अमीर आदमी का ताल्लुक है और ना इस गरीब आदमी का कोई ताल्लुक है उसके साथ। और परवेश अगर आपका ताल्लुक नहीं है, मेरा अगर आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, राइट, तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? नहीं समझ मेरी बात, वाई वुड आई लिसन टू यू? जब दो शख्सों का ताल्लुक नहीं होता तो ताल्लुक पैदा करने के लिए परवेश साहिब यू हैव टू ब्रिंग समबॉडी इन बिटवीन जो आपको भी जानता हो और जो मुझे भी जानता हो। नहीं समझ मेरी बात, हमारे बीच में एक गैप है, फकीर के बीच में और अमीर आदमी के बीच में एक गैप है परवेश साहब, देयर इज अ गैप। जब तक वो गैप फिल नहीं होगा, अमीर आदमी जो है वो आपको, उसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो उस अमीर आदमी का भी दोस्त है और आपका भी दोस्त है, एक तरफ से उसने आपका हाथ पकड़ा है और दूसरी तरफ उसने अमीर आदमी का हाथ पकड़ा है, और आप अमीर आदमी से कहते हैं कि देखो हमारा और तुम्हारा ताल्लुक है, यह शख्स जो है यह तुम्हारा बहुत प्यारा दोस्त है, इसके वास्ते, वास्ते का जैसे हमने कहा भी मतलब कहा, जो बीच में आता है आपके और दूसरे शख्स के, जो बीच में आता है, समझे मेरी बात आपको, कि मैं इस शख्स को बीच में ला रहा हूं। घरों में भी ये होता है, अगर लड़ाइयां होती है, खानदानों में लड़ाइयां होती है, परवेश साहब किसी शख्स को बीच में लेकर आते हैं
जी,
घरों में अक्सर ये कहा जाता है कि फलाने नू वेच पाओ, राइट, फलाने को बीच में डालो तो मसला हल हो जाएगा, ऐसा कहते ना परवेश साहब
जी।
लड़ाई है, एक शख्स है घर, एक गांव में दो घरों की लड़ाई है और एक शख्स है जिसकी सारे लोग इज्जत करते हैं, शोहर वाले खानदान भी इज्जत करता है और बीवी वाला खानदान भी इज्जत करता है, और शोहर और बीवी की लड़ाई है, आप कहते हैं उसको बीच में डालो तो मसला हल हो जाएगा, वो शख्स बीच में आता है, राइट, और वो जो गैप है उसको फिल करता है, आपसे बात करता है उससे, तो आप उसको कहते जी वो फलारे जो शेख साहब है या फलारे जो हाजी साहब है या फलारे जो 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 हाफिज साहब है या फलारे पादरी साहब है, राइट, आप उनके वास्ते, राइट, प्लीज उनका नाम, उनके वास्ते हमारा ये काम कर दीजिए, क्योंकि वो तो आपके बड़े प्यारे हैं। कहने का मकसद ये है कि वास्ता जो होता है, वास्ते के बगैर अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन नहीं है तो वास्ते के बगैर आपकी बात दूसरों तक नहीं पहुंचती। एक और मिसाल देता हूं, रोशनी को और आवाज को, और रोशनी और आवाज जो है वो ट्रैवल करती है, सूरज के ऊपर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं लाखों करोड़ों धमाके हो रहे हैं राइट नाउ, और सूरज से रोशनी निकल रही है, लेकिन वो धमाके जो है परवेश साहब वो हमारे कानों तक उनकी आवाज नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि आवाज जो है उसको सफर करने के लिए वास्ता चाहिए, एक जरिया चाहिए उसको। अगर आप फिजिक्स या साइंस को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जो आवाज है उसको ट्रेवल करने के लिए वास्ता चाहिए, उसको एक अंग्रेजी में कहते हैं मीडियम चाहिए। साउंड ट्रेवल्स ओनली थ्रू अ मीडियम, क्योंकि सूरज और जमीन के बीच में खला है जहां से आवाज सफर नहीं कर सकती, इसलिए आप तक जो धमाके हो रहे हैं उनकी आवाज नहीं आती। मीडियम चाहिए आवाज को सफर करने के लिए। कहने का मकसद है जहां पर गैप होता है वहां पर कोई वास्ता होना जरूर है, वहां पर वास्ता होना जरूर है, क्योंकि जब तक वास्ता नहीं होगा, जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा, आपकी आवाज दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, आपकी परेशानी दूसरा नहीं सुनेगा। आप जब बीच में किसी जो विचोला जो कहते मेरा ख्याल है राइट, जो बीच में पड़ता है, जब आप उसको बीच में लाते हैं तो आपकी आवाज दूसरे तक पहुंचती है। आप कोई वास्ता ढूंढते हैं, प्रोफेसर मैंने सुना, मैं तो मिडिल ईस्ट में नहीं रहा, मैंने ये सुना है कि जब किसी को काम नहीं मिलता तो कहते कोई वास्ता लेकर आओ, है ना, मिडिल ईस्ट में ऐसा होता है ना, कोई वास्ता लेकर आओ, कोई सिफारिश लेकर आओ। कहने का मकसद है वो शख्स जो हमें भी जानता हो और तुम्हें भी जानता हो, तुम ऐसा करो जो फैक्ट्री का मालिक है उसके कुछ सिफारिश लेकर आओ। वास्ता इज बेटर वर्ड, मैं समझता हूं, जिसका उसके साथ भी वास्ता है और तुम्हारे साथ भी वास्ता है, उसका लेटर लेकर आओ तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अल्लाह के वास्ते का मतलब यह है कि आप उस अमीर आदमी से कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारा भी है और अल्लाह मेरा भी है, वो हम दोनों को जानता है, मैं उसको बीच में लाता हूं राइट, क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार है वो तो सारे भिखारी है, मेरे रिश्तेदार तो गरीब है, मेरे रिश्तेदारों को तो रोटी खाने को नहीं मिलती, और तुम्हारे रिश्तेदार का मुझे पता नहीं है, वो इतने अमीर है कि मुझ तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन एक हस्ती है जिसका नाम अल्लाह है, और मैं अगेन डोंट गेट इनटू दैट दिस अभी फिर से नॉट टुडे, ठीक है। तो मैं अल्लाह एक ऐसी हस्ती है जो आपको भी जानती है और मुझे भी जानती है, उसका आपके साथ भी ताल्लुक है, मुझसे भी ताल्लुक है, तो मैं उसका वास्ता देता हूं, उसको बीच में लेकर आता हूं। समझ आई मेरी बात आपको? तो अल्लाह का वास्ता उस वक्त दिया जाता है कि जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं होती, आपका कोई रिश्तेदार कोई कनेक्शन दूसरे की तरफ नहीं होता। पर सब अक्सर फिल्मों में भी हकीकत में भी ऐसा होता होगा कि जब आप किसी के पास जाते हैं और आपकी बात नहीं सुनता, बिल्कुल बात नहीं सुनता, कोई डॉक्टर है वो बिल्कुल इलाज नहीं कर रहा एक जख्मी आदमी का, तो लोग चीखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता देता हूं आपको, ऐसा कहते हैं ना। इसका मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना मैं आपको जानता हूं, ना आपकी बीवी को जानता हूं, ना आपके मां बाप को जानता हूं, मेरा कोई आपके ऊपर कोई जोर नहीं है। जब आप बेबस हो जाते हैं, जी जब आप बेबस हो जाते हैं तो फिर आप अल्लाह का वास्ता देते हैं। समझ नहीं पाता आपको? अल्लाह का वास्ता बेबसी की निशानी है कि मेरा कोई हक नहीं है, मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपको नहीं जानता, ना आपके ऊपर कोई जबर है, ना ही और हमारे बीच में कोई और नहीं है, अब सिर्फ एक ही हस्ती है जो आपको भी जानती है और मुझे भी जानती है, आइए हम उसको बीच में लेकर आते हैं, एक तरफ से आपका हाथ पकड़े, एक तरफ से मेरा हाथ पकड़े, मेरी आवाज आप तक पहुंचाए, क्योंकि आप उसको जानते हैं, आप उसकी आवाज सुनेंगे, मैं अल्लाह का वास्ता आपको देता हूं, मेरा ये काम कर दीजिए। यानी कि मैं अल्लाह के जरिए आप तक अपनी आवाज पहुंचाता हूं, कम से कम अल्लाह की बात तो आप सुनेंगे। समझ आई मेरी बात आपको? जैसा मैंने डिक्शनरी में से वास्ते कलम जो दो चीजों को कनेक्ट करता है, जो दो चीजें अलहदा है उनको कनेक्ट करता है। अगर आपकी बीवी रूठी हुई है आपसे और तो आप किसी वास्ते को ढूंढेंगे जो दोनों तरफ से जानता हो। अगर आपका शौहर घर छोड़कर चला गया है, जैसे मैंने कहा, वास्ता ढूंढेंगे। जॉब की जरूरत है फैक्ट्री के मालिक के साथ, आप वास्ता ढूंढेंगे जिसका ताल्लुक उसके साथ भी है और आपके साथ भी है, क्योंकि उसके अलावा आप बेबस है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि नौकरी नहीं मिलेगी, आप इसके काबिल भी नहीं है नौकरी की, राइट। बात को आगे बढ़ाते हैं, परवेज साहब, एक फकीर है, जैसे मेरे बताता गौर से सुनिएगा बात, अभी थोड़ा टर्न लेने वाली है ना, स्टोरी टर्न लेने वाली है, अभी इंटरवल हो गया है। मसला ये कि हमारे उसमें प्रवेश सब वो हमारे प्रोग्राम में वो गीत भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर वो बात दूसरी तरफ चली जाती है, हम अपनी बात को मुकम्मल करना चाहते हैं। सब इंटरवल से मुझे याद है, आपने फिल्म तो देखी होगी आपने पाकिस्तान में
जी।
इंटरव्यू में सब बड़ा वो एक एक्सपीरियंस होता था, जैसे इंटरव्यू होता था बोतल वाले आ जाते थे राइट, वो कोका कोला लेकर राइट, और फिर बाज कदम बाहर चले जाते थे सिनेमे के, और वहां पर वो सारा खाने की चीजें होती थी। ऐसा हुआ प्रवेश साहब कभी आपने किया सर? ब्लैक में टिकट खरीदी कभी आपने? ब्लैक में टिकट खरीदी कभी आपने? अच्छा दैट्स गुड। तो मेरा मतलब यह है कि इंटरवल हमारा इतना दिलचस्प नहीं है जितना फिल्मों में शायद होता है आजकल, पता नहीं लोग फिल्मों में देखने जाते हैं सिनेमे में कि नहीं, आजकल तो घरों में सब कुछ देखा जाता है, लेकिन इंटरवल हो चुका है हमारा और आप कहानी टर्न लेने लगी है, ये मेरा कहने का मतलब। सर फासले जो है वो जिंदगी की हकीकत है, ऐसा है ना, फासले जिंदगी की हकीकत है, ठीक है। हम और कुछ वास्ते हैं जो इंसानों को आपस में जोड़ते हैं, है ना परवेश साहब? परवेश साहब आप खुदा ने एक बहुत यू नो यास्मीन बहन हमारी बहना आपकी मिसेस, खुदा ने आपको आपके ऊपर यू नो बड़ा करम किया है, आपका उनका जो
बहुत बड़ा
और मैं तो आपका उनका जो रिश्ता है परवेश साहब देख रही है। सलाम कहिए यास्मीन बहन को। तो आपका और उनके दरमियान प्रवेश साहब क्या वास्ता है प्यार का? प्यार ने आपको जोड़ा हुआ है, क्या कहना है आपका? उस रिश्ते का वास्ता है जिसमें आप जुड़े हुए हैं, है ना मेरा कहने का मकसद, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मकसद सेम इज ट्रू फॉर मी राइट, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, तो हमारा एक रिश्ता है जो जुड़ा हुआ है राइट, एक वास्ता है जिससे हमें जुड़ा हुआ है। इसीलिए अक्सर लोग अपनी मोहब्बत का वास्ता देते, प्यार का वास्ता है कि तुम घर छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे प्यार का वास्ता है। सी ऑल दिस थिंग, आपको वास्ता जो है ऐसी ऐसी जगहों पर नजर आएगा जिसके शायद आपने कभी अभी तक सोचा ना हो, जिसके बारे में
बाप का वास्ता,
बहन का वास्ता, अपनी मेरी इज्जत का वास्ता है, बच्चों का वास्ता, ऐसा कहते ना प्रोफेसर, बच्चों का वास्ता है घर छोड़कर मत जाइए राइट, बच्चों को मैं बीच में डालती हूं, बच्चे आपके भी और मेरे भी है, प्लीज घर छोड़कर मत जाइए, ठीक है। मैं तुम्हारे प्यार का वास्ता देती हूं, उन कस्मों और वादों का वास्ता देती हूं जो शादी से पहले तुमने मेरे साथ किए थे, प्लीज मुझे मत मारो, मैं उस मोहब्बत का वास्ता देती हूं। और दिस इज ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ, आज भी घरों पे औरतों के ऊपर जुल्म होता है, एंड दिस इज अ कर्स आई बिलीव, जब किसी शख्स के ऊपर लानत पड़ती है, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट, उस वक्त वो औरत के ऊपर अपने हाथ को उठाता है, उसको शर्म आनी चाहिए। और हम दुआ करते हैं, कोई जजमेंट नहीं है आपके खिलाफ, इसका मतलब है कि आप शैतान के कब्जे में हैं, आप यू आर अंडर अ कर्स, मे बी यू हैव सीन अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हिटिंग योर देयर वाइव्स एंड यू आर कंटिन्यूइंग इट, इट्स अ जनरेशनल कर्स, एंड वी प्रे एंड वी आस्क गॉड टू ब्रेक दैट कर्स फ्रॉम योर लाइफ, दैट यू स्टॉप हिटिंग योर वाइफ, यू स्टार्ट लविंग हर। उस मोहब्बत का वास्ता जो कभी जिससे आप इस रिश्ते में जुड़े हैं, आई जस्ट बिकेम पैशनेट अबाउट दैट, दैट इज नॉट अ पॉइंट टॉपिक, लेकिन आई से थिंग्स बिकॉज, तो वास्ते में हम सब जुड़े हुए हैं। जब आपका रिश्ता टूटता है परवेश साहिब, तो फिर हम उन वास्तों को बीच में लेकर आते हैं, बीवी के साथ, शौहर के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, हम उन वास्तों को साथ लेकर आते ताकि रिश्ते को बहाल किया जाए। परवेश साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अल्टीमेटली कौन सा वास्ता है जो आप लेकर आते हैं? इंसान सबको ठुकरा देता है और एंड पर जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, बेबसी की हालत में हम अल्लाह का वास्ता देते हैं, हम खुदा का वास्ता देते, कहे कि उसकी तो तुम सुनोगे कम से कम, बच्चों की तुमने नहीं सुनी, मेरी परवाह नहीं की, उस मोहब्बत को भूल गए जो तुमने, जिसके वादे तुमने मुझसे किए थे राइट, तुमने अजीज रिश्तेदारों के लिए अपने मां बाप की नहीं सुनी, तुम्हारे बाप का वास्ता दिया, तुम्हारे बाप की इज्जत का वास्ता दिया, तुम नहीं सुना। तो बेबसी की हालत में हम अल्लाह का वास्ता देते हैं, अल्लाह को बीच में लेकर आते हैं। परवेज साहब, माय पॉइंट इज दिस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दो पार्टियां जब व्हेन देयर इज अ ग्रीवेंस इन बिटवीन देम, इख्तलाफ है उनके बीच में, तो आपका आखिरी जो वास्ता है वो अल्लाह का वास्ता होता है ना परवेज साहब
जी।
अब आप मुझे ये बताइए परवेज साहब, आपके भैरव भाई से पूछता हूं कि अगर आपकी बीवी रूठी है, राइट, अगर आपकी बीवी रूठी है, अगर आपका शौहर रूठा है, रिश्तेदार बहू सास रूठी है, तो आप रिश्तेदारों का वास्ता देते हैं, आप अल्लाह का वास्ता देते हैं, अल्लाह को बीच में लेकर आते हैं। अगर, और ये एक की क्वेश्चन है इस पूरे प्रोग्राम का, पर वैसे अगर अल्लाह ही आपसे नाराज है तो आप किसका वास्ता देंगे?
क्या बात है,
अदा, अगर बीवी नाराज हो गई, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा, पैसे नहीं आपके पास, आप बेबस हो गए, फकीर है, भिखारी है, आप अल्लाह का वास्ता देते हैं, आखिरी हरबा, द लास्ट रिसोर्ट, आप अल्लाह का वास्ता देते हैं कि अल्लाह के नाम पर तो सुनेगा। और अगर अल्लाह ही आपके मुखालिफ है, अगर जो जो दूसरी पार्टी है अगर वो खुद ही अल्लाह है, तो आप किसका वास्ता देंगे? दैट इज माय पॉइंट। अगर अल्लाह और आपकी जुदाई हो गई है, अगर आप अल्लाह से जुदा हो गए हैं, तो आप किसका वास्ता देंगे? टेल मी दिस, मुझे बताइए। थोड़ी देर सोचिए, अब क्या बनेगा, तेरा क्या बनेगा, अब क्या होगा, और ये सब क्या कहते हैं, अब क्या होगा, तेरा क्या बनेगा काल, राइट, जब अल्लाह ही आपके खिलाफ हो गया, खुदा ही आपके खिलाफ है, जब जो अपोजिंग पार्टी है अदालत में, एक तरफ अल्लाह है और एक तरफ आप है, अब आप किसको सालस बनाएंगे, आप किसको बीच में लेकर आएंगे? ये एक वो हालत है परवेज साहब, जिससे बहुत से बहन भाई, जिससे ना आशना है, उनको अवेयरनेस नहीं है इसकी, कि हकीकत में उनका खुदा से ताल्लुक टूटा हुआ है। और से मेरी बात सुनिए, आप कहेंगे ये कैसे, मैं सबूत देता हूं आपको परवेज साहब, जहां ताल्लुक टूटा होता है ना, वहीं पर मनाने के लिए, वहीं पर उसके पास जाने के लिए कुछ किया जाता है। गौर से सुनते जाइएगा, जहां पर ताल्लुक टूटा नहीं होता परवेज साहब, वहां दरवाजा आप बगैर खटखटाए अंदर चले जाते हैं, आप उस जगह रहते हैं, जब ताल्लुक होता है तो आप इकट्ठे रहते हैं
जी।
जहां ताल्लुक टूटा होता है, वहां पर आप कुछ करते हैं, कुछ करके उस ताल्लुक को बहाल करने की कोशिश करते, उसको राजी करने की कोशिश करते। कभी आपने सुना अल्लाह को राजी कर लो? हाँ, सुना आपने, जहां पर अल्लाह के वास्ते सुना है, वहां पर आपने ये लफ्ज भी जरूर सुना हो कि अल्लाह को राजी कर लो। लेकिन ये कोई सही, मुझे जो हैरत होती है कि कभी किसने खड़े होकर कहा कि जनाब मौलवी साहब, पादरी साहब, पंडित जी, अल्लाह से राजी, अल्लाह नाराज कब हुआ था, और नाराज कब हुआ था, क्यों हुआ था, राइट? आप कहते हैं जी अल्लाह की इबादत करो तो राजी हो जाएगा, क्या अल्लाह इसलिए नाराज हुआ था कि मैंने उसकी इबादतें बंद कर दी थी, राइट? अगर अल्लाह इसलिए नाराज हुआ है कि मैंने उसकी इबादतें बंद कर दी थी, तो ठीक है, फिर मैं इबादतें करता हूं ताकि वो खुश हो जाए। अगर अल्लाह इसलिए नाराज हुआ था, और माफ कीजिए मैं उंगली नहीं उठा रहा, मैं पॉइंट बना रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, अब मेरा खुदा मेरे दिल को जानता है, अगर अल्लाह इसलिए नाराज हुआ था कि आप रोजे नहीं रखते, ठीक है, तो फिर आप रोजे रखिए ताकि अल्लाह नाराज ना रहे, राइट, राजी हो जाए। यानी कि आपको राजी करने के लिए क्या करूं, है ना, मैं कौन सा गीत, एक बड़ा खूबसूरत गीत है, मैं कौन सा गीत सुनाऊं जो तेरे मन भाए, समथिंग लाइक दैट, है ना, कौन सा गीत सुनाऊं, किस बात पे तुझे परेशान किया है अल्लाह को, खुदा को, ताकि मैं उसका अजाला कर सकूं। अल्लाह को राजी करने की तो बात करते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि अल्लाह नाराज हुआ क्यों था। इसीलिए बहुत से लोग, क्योंकि वो राजी करने की कोशिश करती है, ये किसी ने हाथ उठाकर नहीं पूछा कि अल्लाह नाराज क्यों हुआ था, सारी उम्र जद्दोजहद करते रहते हैं और मरते दम तक पता नहीं चलता कि अल्लाह राजी हो गया है या नहीं। इट्स अ वेरी ट्रेजिक वे टू लिव। तो मेरा कहने का मकसद है कि खुदा की आपके साथ नाराजगी का एक सबूत तो आप खुद है, जो आप कहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो, اور بعض اوقات وہ واسطہ جو ہے راضی کرنے کے لیے آپ اپنے امال کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. دیکھیں نا پرویز صاحب, کسی نہ کسی چیز کا تو واسطہ دیا جاتا ہے نا. تو آپ یا تو کسی ہستی کو لے کر آئے اپنے بیچ میں, یا آپ اپنے امال اپنے عبادتوں کو لے کر آئے کہ شاید ان کی وجہ سے خدا کے ساتھ جو میرا ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ بحال ہو جائے, میرے امال وہ واسطہ بن جائے جس سے میں خدا تک پہنچ جاؤں, میرے امال وہ واسطہ بن جائے, وہ رستہ بن جائے جس سے میں جنت تک پہنچ جاؤں, کیونکہ اب جنت سے باہر ہے. سمجھا میری بات آپ کو؟ تو اگر اللہ ناراض ہے تو آپ کس کو لائیں گے بیچ میں؟ اب آپ مجھے بتائیے کس کا واسطہ دیں گے؟ پرویز صاحب یہ ایک بڑی ٹریجک سچویشن ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں سنتے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں زندگی میں سوچے سمجھے بغیر, اور آخر میں شرمندگی اٹھاتے ہیں. آخر میں وہ اس دنیا سے بغیر اللہ کو راضی کیے ہی رخصت ہو جاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شاید اللہ خدا راضی ہو چکا ہے ہم سے, یقین نہیں آتا ان کو. کیونکہ جب خدا آپ کی اپوزنگ پارٹی ہے تو آپ بیچ میں کس کو لائیں گے؟ اور اسے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. پرویز صاحب اگر خدا مجھ سے ناراض ہے تو میں یہ کہوں گا میں پرویز کو لے کر آتا ہوں بیچ میں تاکہ وہ میرے, تو خدا کہے کہ میں تو پرویز سے بھی ناراض ہوں, تو اس کو لے کر آ رہا میں تو اس سے بھی ناراض ہوں, رائٹ؟ اچھا تو میں ایسا کرتا ہوں فلانے بابے کو لے کر آتا ہوں, تو بابے کو لے, بابا جی آپ جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ میرا تعلق ناراضگی کروا دیجئے, ہے نا دوستی کروا دیجئے, خدا خدا کو راضی کروا دیجئے میرے, تو خدا کہے گا کہ میں تو اس بابے سے بھی ناراض ہوں. کس کو لے کر آئے گا؟ سب نے گناہ کیا, کوئی انسان خدا کے اور بیچ میں آپ کے نہیں آ سکتا, اٹس امپاسبل. کیونکہ جس شخص سے خدا آلریڈی ناراض, دیکھیں نا پرویز صاحب آپ کا تعلق اگر خدا سے ٹوٹا ہوا ہے, خدا آپ سے ناراض ہے, تو آپ کو میں لے کر آؤں گا تو خدا بولے گا یہ تو ٹوٹا ہوا وہ پل لے آیا تو, ہے نا یہ تو آلریڈی مجھ سے دور ہے, تو اس کے ساتھ اس کی وجہ سے تو تیرے ساتھ میرا کنیکشن نہیں ہو سکتا نا. کوئی ایسی ہستی آئے جو ایک ہاتھ سے خدا کو پکڑے ہاتھ سے دوسری طرف سے ہمارا اور ہمیں ملا دے, ہو سکتا ہے آپ کے اعمال ہو, آپ کے اعمال بھی تو گیپ پہ جیسے میں نے کہا, لیکن آپ کے اعمال ہو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے اعمال کی وجہ سے خدا ناراض نہیں ہوا, ہے نا, تو ہو ہی نہیں سکتا, نہ ہی آپ کے اعمال اس قابل ہے کہ ان اعمال کا کیا جو آپ نے کیے نہیں. کیا آپ کے اعمال کافی ہو گئے ہیں خدا کو راضی کرنے؟ آپ کی عبادتیں کافی ہو گئی؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, بڑا گمبھیر سوال ہے کہ جب خدا آپ سے ناراض ہے تو کس کو واسطہ بنائیں گے آپ؟ اگر جس کو اس حقیقت کا پتہ لگ گیا, کائنات کی پوری حقیقت اس کے اوپر کھل جائے گی. میں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے رہا ابھی, رائٹ ناؤ, آج کے پروگرام میں دوں گا لیکن اس وقت نہیں دے رہا, اس لمحے میں نہیں دے رہا. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اگر اللہ آپ سے راضی نہیں ہے, یعنی کہ اللہ اور آپ کے بیچ میں گیپ ہے, آپ کس کو واسطہ بنائیں گے؟ اگر آپ کسی انسان کو واسطہ بناتے ہیں پرویز صاحب, تو بائبل ہمیں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتی ہے, شرک. بائبل میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تو کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرنا, کسی کو میرے ساتھ شریک مت کرنا کہ یہ شخص جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ لے کر دوسری طرف دے, کسی کو شریک مت کرنا. ہم جانتے نہیں, ہم شرک 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 کہہ کر مسیحوں پر الزام لگاتے ہیں, شرک کی مختلف قسمیں ہیں, بہت سے لوگ انجانے میں شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں یہ جانے بغیر کہ وہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں, کیونکہ اکثر ہم سوچتے نہیں ہیں اس کے اوپر, جو پٹی پڑھائی جاتی ہے اسی کو طوطے کی طرح رٹتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
खुशखबरी हुण तुहानू अपने प्यारियां नू पैसे भेजण लई किते जाण दी लोड़ नहीं। Zoom ने पैसे भेजण दी प्रक्रिया नू बहुत आसान कर दिता है। XOOM Zoom अपने फोन ते XOOM ऐप डाउनलोड करो अते अपनी उंगली दे एक इशारे नाल पैसे भारत पाकिस्तान भेजो। Zoom XOOM मनी ट्रांसफर भारत दीआं मुख बैंकां विच पैसे सीधे तौर ते ट्रांसफर करन दी सहूलत दिंदा है। नाल ही कैश पिकअप करो। याद रखो डालर दा वधिया रेट, आसान अते फास्ट सर्विस अते पैसे भेजो बिना किसी कमिशन ते। XOOM Zoom एक पेपल सर्विस, तेज अते सुरक्षित मनी ट्रांसफर। Zoom XOOM
इस रविवार दोपहर 1 बजे फेडरल ऑक्शन एक शानदार जूरी ऑक्शन करने जा रहा है। कस्टम्स की सीज किए हुए डायमंड्स और बहुत से कीमती गहने जैसे 1 से 4 कैरेट की डायमंड रिंग्स, 22 कैरेट गोल्ड, एमरल्ड और रूबी सेट्स पर डील्स पाइए और लीजिए अपनी मनपसंद ब्राइटलिंग, ओमेगा और कार्टियर घड़ियां। बिड्स ऑन रोलेक्स वॉचेस एंड डायमंड्स स्टार्ट फ्रॉम 70% बिलो रिटेल। सिर्फ इस रविवार दोपहर 1 बजे एट पार्क इन बाय रैडिसन 175 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। अधिक जानकारी के लिए federalauction.ca/mississauga और कॉल 416-726-6884।
ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਟਰ, ਬਲਾਈਂਡਸ, ਵਰਟੀਕਲਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਹਨੀ ਕੈਂਪਸ, ਪਲੀਟਡ ਸ਼ੇਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ। ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 416-803-1043 416-803-1043 ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com।
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
नए साल के लिए देख रहे हैं घर के लिए खूबसूरत फर्नीचर या फिर गिफ्ट्स? तो फिर पहुंचिए कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस। कंफर्टेबल, अफोर्डेबल, यूनिक फर्नीचर, वॉल आर्ट्स, पेंटिंग्स, सेंटरपीसेस, लैंप्स एंड ऑल अदर गिफ्ट्स। कोई भी फर्नीचर का स्टाइल और डिजाइन किसी भी कीमत को बीट करेंगे। लार्ज कलेक्शन, वैरायटी टू चूज।